अयोध्या कांड के बीच के वहां वशिष्ठ जी महाराज जो है भरत जी को कहते हैं कि आज का दिन अच्छा है और सब सामग्री राज तिलक की सारी सामग्री मौजूद और सब तीर्थों का जल भी मौजूद है, तो हम सब की इच्छा है कि आज तुम राज तिलक करा लो। तुम्हारी माताओं की इच्छा विशेष करके कौशल्या की और मंत्रियों की और शहर के धनी मानी मनुष्यों की और हम लोगों की मंत्रियों की सबकी इच्छा है और गुरुजनों की कि आज सब कोई तुम्हारा राज तिलक देखना चाहते हैं। भरत को राजगद्दी देने के वास्ते सब उससे कह रहे हैं। भरत जी क्या कहते हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। भरत जी कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा हमारे हित के लिए कहा होगा, किंतु इसमें मुझको मेरा हित नहीं दिखता और मुझको राजा बनाने पर या राजा बनाने से न मेरा हित है न आप लोगों का हित है और न प्रजा का हित है। राजा बनाने के जो ग्राम है उनको ही राजा बनाना चाहिए, वह इसके लायक है। मेरी यह इच्छा है कि चित्रकूट को चलकर के भगवान राम को वापिस लाएं और इसमें आप सब मुझको मदद करें। आपकी जो बात मैं नहीं मानता हूं ये बड़ा अपराध करता हूं, किंतु इसके लिए मेरे पर क्षमा करनी चाहिए। आपकी आज्ञा पालने के मैं लाचार हूं। इस प्रकार से प्रेम की और सभ्यता की बात भरत जी ने कही। तो इसी प्रकार से विधवा स्त्री का यह कर्तव्य है पीर में या ससुराल में घर वाले इस प्रकार से बात कर देवे कि तू ऐसा आराम कर विषयों का भोग कर, गहना पहर, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहर। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए जैसे भरत ने अपने वशिष्ठ जी से की थी कि आप मेरा हित समझ कर ऐसा करते होंगे, किंतु इन कपड़ों के गहनों के पहनने के माँ मुझको मेरा हित नहीं दिखता। हित नहीं वो तो कलंक अपने लिए। तो इस प्रकार से यदि प्रार्थना की जावे तो घर वालों की भी आंख खुल सकती है, वे भी होश में आ सकते हैं। उनका जो ये कहना है वह बिल्कुल बेकायदा है, किंतु जो समझदार जो विधवा स्त्री होती है वह ऐसा वचन कहती है जिससे सबकी आंखें खुल जाती है। भरत जी का उदाहरण इसलिए मैंने कहा कि भरत जी के मां कितना बड़ा त्याग था, कितना बड़ा वैराग था। इतना ही नहीं, माता ने भरत के लिए 14 वर्ष के लिए जो सो राज के वास्ते वरदान दशरथ जी से मांगा और दशरथ जी ने राज 14 वर्ष के लिए दे दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको बाध्य कर करके 14 वर्ष के लिए समझो के राज करने की आज्ञा दी और 14 वर्ष के बाद मैं आ जाऊंगा ये विश्वास दिलाया। किंतु भरत जी ने आगे क्या किया ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भरत जी ये सोच रहे हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम बन के मां जमीन पर सैन करते हैं, तो मुझको तो जमीन के मां गड्ढा खोद करके सैन करना चाहिए। भगवान राम बलकल वस्त्र पहनते हैं, मृग चर्म ओढ़ते हैं, तो मुझको भी उसी प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भरत जी ने वैसा ही किया। भरत जी महाराज मृग चर्म ओढ़ते थे, बलकल वस्त्र पहनते थे, जो अपने जैसे ये हेसियन जो है ये बलकल वस्त्र है माने चटके वस्त्र, और जटा रखते थे, कभी हजामत नहीं कराई भरत जी ने। और मुनियों के योग जो खाना होता है समझो कि कंद मूल फल यही खाया करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। जैसे भगवान राम वन में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, भरत जी गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और जो कोई मुक्तमा मामला आता था उसको भगवान के चरणों की पादुका को सुना दिया करते थे और चरण पादुका राज सिंहासन के ऊपर चरण पादुका रहा करती थी और आप उनके नीचे सेवक बनकर के उनकी पूजा किया करते थे चरण पादुका की। तो माता बहनों को यह बात सीखनी चाहिए कि जैसे भरत जी महाराज राज में रह करके भी अपने वैराग से थी अपना जीवन बिताते थे, इसी प्रकार से थी गृह में रह करके विधवा स्त्रियों को भरत की माफक अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भरत के लिए भगवान आए कि नहीं आए? तो आपके लिए क्यों ही भगवान आ हुई? भरत जी को आदर्श मान करके और उसी प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए। और ये भी आपको ख्याल करना चाहिए, ये बड़े प्रेम की बात है। भरत जी जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तो उसियों के बीच के वहां भरद्वाज जी ने उनकी बड़ी भारी खातरी करी, अतिथि सत्कार किया, घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथीसाल, रिद्धि और सिद्धियों के द्वारा मिनटों में सबकी रचना कर दी, और खाने और पीने के लिए ऐसे पदार्थों की रचना करी जो जिन्होंने कभी खाए नहीं थे, और सब एकदम मुग्ध हो गए। भरत शत्रुघ्न आदि जो भगवान के विशेष प्रेमी थे उनको छोड़कर के सबकी इच्छा हो गई कि कुछ दिन यहां ही रहे। ये वाल्मीकि के मां कथा आती है। उसके बाद के बीच के मां भरत के लिए एक राजमहल बनाया गया, उसमें राज सिंहासन जिसके ऊपर समझो मखमल आदि के गदरे भरत के आराम करने के लिए। किंतु भरत ने क्या किया? भरत ने सोचा कि ये तो भगवान राम के लिए होना चाहिए, वही राजा है, मैं तो राजा नहीं, मैं तो सेवक हूं। उस सिंहासन के ऊपर भगवान राम का आह्वान किया मन ही मन के बीच के मां, मानसिक भाव से थी भगवान की वहां स्थापना करी, और मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न के सहित रात भर जाग करके और भगवान के ऊपर छत्र और समर करते हुए उनकी सेवा करते रहे मानसिक भाव से, मानसिक पूजा जिसको हम कहते। लक्ष्मण जी भगवान राम की साक्षात सेवा करते हुए और जागते हैं, और यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान की अनुपस्थिति के वहां भगवान का आवाहन करके के रात्रि में जो सोने का स्थान है वहां जाग करके उनकी अपने मन से सेवा कर रही। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड निकाल करके देखो, नहीं बात क्या और भी आप ख्याल करके देखो। भगवान राम के विषय में लक्ष्मण जी की सेवा का विषय, भरत जी महाराज जो है सो गुरु से पूछ रहे कि मैं सुनता हूं कि शिशुपा के वृक्ष के नीचे एक रात जो है सो आपने भगवान ने वास किया, मैं उस वृक्ष का दर्शन करना चाहता हूं। तो वो वहां ले गए जहां सीता और राम ने शयन किया था उस वृक्ष के नीचे। उस समय के बीच के मां जो है वहां सीता के वस्त्रों के जो तार वहां कुछ खिंडे हुए थे और कुछ गोल गोल जो तारे होते हैं वे थे, उनको उठाकर के मस्तक के लगाया और रोने लगे कि मुझको धिक्कार है कि मेरे कारण सीता को इस भूमि के ऊपर कुशा की साथी पर सहन करना पड़ा, मुझको धिक्कार। जिस सीता का दर्शन सूर्य चंद्रमा और वायु आदि देवता नहीं कर पाते थे, आज उस सीता का दर्शन बन के कोल और किरात करते हैं और बन के पशु असो करते हैं, तो मेरे को धिक्कार है। मेरा जन्म नहीं होता तो अच्छी बात थी, मेरे जन्म का एक प्रकार से ये नतीजा। इस प्रकार से थी आपने मर्जी विलाप करते हुए ही फिर पूछने लगे कि किस प्रकार से रात बिताई सीताराम और लक्ष्मण ने। इसके पूछने पर गुरु कहता है भरत जी को कि सायंकाल हो गया तो भगवान ने पीने के लिए जल मांगा, तो लक्ष्मण जी गंगा से एक लोटा भर करके जल का ले आए, भगवान राम ने उस जल का पान किया और लोटे में जो बच गया था उसे का पान लक्ष्मण जी ने किया। रात्रि के समय में वीर आसन से बैठ करके लक्ष्मण जी जब चौकीदार की माँ को पहरा देने लगे तो मैंने कहा कि लक्ष्मण तुम भी शयन करो, सीता और राम शयन करते हैं, तुम भी शयन करो और मैं पहरा दूंगा और मेरे ज्ञाति जनों के साथ मेरे ज्ञाति वाले जाति वाले वे भी पहरा देंगे और उनके साथ मैं भी रहूंगा और तुम भी सुखपूर्वक रात्रि में सो। लक्ष्मण रोते हुए लक्ष्मण ने कहा कि गुरु तुम्हारा कहना ठीक है किंतु सीताराम जब भूमि पर पड़े हैं तो ऐसे समय में मुझको नींद कैसे आ सकती। मैं सेवक हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं रात पर इनका पहरा दूं। मेरे अनुरोध करने पर भी एक प्रकार से थी लक्ष्मण ने ये बात स्वीकार नहीं की, सोना स्वीकार नहीं किया और रात भर पहरा देते रहे। ऐसा भी मिलता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण कभी सोए ही नहीं। तो गुरु कहता है कि मैं भी उसके साथ में रात भर जागता रहा और भगवान राम के गुणों का गान करते रहे। यह भक्ति, यह प्रेम अपने बड़े भाई को पिता समझ करके उसके साथ में ऐसा प्रेम होना चाहिए और बड़े भाई का छोटे भाई में ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जैसा श्री राम का भक्त शत्रुघ्न लक्ष्मण में था। भरत जी महाराज बार बार समझो कि अनुरोध करते हैं भगवान को अयोध्या में वापस लौटने के लिए और भगवान इनकार कर देते हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आती है। आखिर के बीच के मां भरत जी ने ये आग्रह किया कि यदि आप लौट कर अयोध्या को नहीं चलोगे तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा किंतु लौट कर अयोध्या नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, देवा का आश्रम बिछा करके और उस पर बैठ करके अनशन व्रत आरंभ भी कर दिया। भगवान ने कहा कि व्रत इस प्रकार से धरना देना, बड़ों के साथ के मां ऐसा आग्रह करना ये धर्म नहीं है, ये पाप है। तो बल्कि तुम्हारे को इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। भरत का जो हट है, आग्रह है, उसको भगवान दुराग्रह समझते हैं और दुराग्रह समझ करके उसको पाप समझ करके उसके लिए पश्चाताप और उसके लिए अपना प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। किंतु ख्याल करना चाहिए हम लोगों की बुद्धि में न तो वो पाप है और न उसका कोई प्रायश्चित करने कोई पाप ही नहीं, तो फिर प्रायश्चित किसका। वे तो भगवान के साथ के मां प्रेम का आग्रह है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज आप समझाइए इसको। तो फिर वशिष्ठ जी समझाने लगे कि भरत महाराज की आज्ञा है तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना है तेरा परम कर्तव्य है। यदि भी तुम्हारे लिए ये बहुत ही कष्ट की बात है किंतु क्या किया जाए। 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए कुछ तुम भाई से मांग लो। तो उस वक्त के बीच के मां ये सोचा कि भगवान की जो चरण पादुका है वही मेरे 14 वर्ष के लिए आधार हो। भगवान से कहा प्रभु जब आपकी आज्ञा है तो मैं अपने वर्ष को तोड़ देता हूं और आपकी आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए मैं अयोध्या को चला जाता। पर 14 वर्ष की जो अवधि है इसके आधार के लिए आपकी चरण पादुका मुझको दे दीजिए, वो चरण पादुका ही राज करेगी और मैं उनकी सेवा करूंगा। भरो रूप से सुपया हुआ आपका राज 14 वर्ष के बाद आपके चरणों में रख दू। भगवान ने अपनी चरण पादुका दे दी, भरत ने उस चरण पादुका उनको अपने मस्तक पर धारण किया और रोते हुए भरत बिठा हुए और कहा कि महाराज 14 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद और 15 वर्ष के पहले दिन आप नहीं पूछोगे तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक, मैं नहीं पूछू तब दो। इसका नाम प्रेम। वाल्मीकि रामायण में बताया जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त होगी और भगवान राम जब एक प्रकार से अयोध्या को गए विमान में बैठ करके तो कैसा उत्तम व्यवहार है। वाल्मीकि रामायण में ही नहीं, पद्म पुराण के मां लिखा है, जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई उस समय में भिक्षुण ने बहुत कुछ आग्रह किया कि अब कुछ दिन यहां रहिए। भगवान राम ने साफ कह दिया कि अब मैं जब ठीक समय पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरे प्रेम प्यारे भाई भस के मुझको दर्शन नहीं होंगे, इसलिए मुझको जल्दी अयोध्या के वहां पहुंचाने का कोई साधन हो तो पहुंचाओ। भाईवान मंगाया गया, उसमें भगवान बैठे सीता लक्ष्मण सहित और सब बंदर सो बैठे, रीस बैठे और बहुत से अपने राक्ष लोग भी जो प्रेम से गए वे भी बैठे, और किष्किंधा में उसको उतारा गया, वहां से बंदरों की स्त्रियों को भी साथ में लिया गया। उसके बाद में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान को फिर उतारा गया। पद्म पुराण में लिखा है कि फिर भगवान रामचंद्र जी आ रहे हैं, और इधर से थी भरत जी ने सोचा कि अभी तक महाराज पहुंचे नहीं, चलो उनके सन्मुख चले। पैदल ही भगवान के सन्मुख जा रहे हैं मंत्रियों के सहित, और पूछ रहे कि हनुमान अभी तक वायुमान नहीं दिखता है। इतने के वहां वायुमान दिखने लगा, हनुमान ने कहा कि देखो वो वायुमान आ रहा है। अब भरत जी वहां से ही प्रणाम करने लगे, भगवान ने भी देखा कि मंत्रियों के सहित भरत आ रहे, रास्ते में वायुमान को उतारा और भरत जी नीचे से नमस्कार किया, और वायुमान ने चढ़ करके भगवान को नमस्कार किया, और भरत जी को भगवान बारंबार आह्वान करते हैं और कहा कि भैया भैया भैया, प्रेम के मां विवल होकर के 5 दफा कहे उसी शब्द को, अपने गोद में बैठा करके दोनों भाई रोने लगे, प्रेम से दोनों रोने लगे। उसके बाद कुशल खेम पूछी, और फिर वायुमान उड़ कर करके एक प्रकार से वहां नंदी ग्राम के मां आया। तुलसीकृत के मां भक्त मिलाप दूसरे प्रकार से बतला गया, वो भी ठीक है। कोई युग के मां त्रेता युग तो बहुत दफा हो चुके, कोई युग में तुलसीकृत के मापक समझना चाहिए, कोई युग के बीच के मां वाल्मीकि मापक, कोई युग के बीच के मां पद्म पुराण के मापक। स्त्रियों की शिक्षा की बात में कह रहा था, उसके वहां स्त्रियों को किस प्रकार से थी अपने जीवन बिताना चाहिए, उसमें भरत जी का चरित्र याद आ गया। और एक भाई एक माता का ये प्रश्न था कि भाई आप प्रेम की बात ऐसी सुनाओ कि जो पहला कभी नहीं सुनाई, उसको भी शामिल में कर लिया। विधवा माताओं को अपने पीर में या ससुराल में रह कर के तपस्या करनी चाहिए, ये मन और इंद्रियों को बस न करके अपने धर्म का जो पालन है ये विधवा के वास्ते तपस्या है। भारी से भारी आपत्ति आने पर भी अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के धर्म के पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जा रहा है तो उस मृत्यु में भी कल्याण है। ईश्वर की भक्ति तो सबसे बढ़कर विधवा स्त्री के लिए है, विधवा स्त्री के तो लिए त्याग करने को सहज नहीं, किसी के उच्च कोटि के साध्य के तो वह अपने साधारण आदमी के लिए तो इनको त्याग भी कठिन नहीं है। तो ये 5 जो पदार्थ है ये अपने लिए घातक है, तो एक प्रकार से आत्मा को धार चार जय के लिए इनको क्या करना चाहिए। नंबर 1 पहला मान पर देखो कंचन, फिर कामनी, फिर मान बढ़ाई पर ईर्ष्या, ये 5 का नंबर है। तो रुपया को जो त्याग करना है तो कोई बोलो कठिन है, कंचन माने रुपया, तो वो को त्याग करना याद देखो कि रुपया को जो स्वार्थ है जगह त्याग करने वाला कितना आदमी है, बहुत ही कम आदमी मिलेगा। अब दूसरे नंबर के वहां स्त्री, जो स्त्री कहने से ही उसके साथ में पुत्र समझ लेना चाहिए, और कहीं पुत्र को न आवे तो मैं उनके साथ में अस्त्र उसके अंतर्गत समझ लेनी चाहिए कि संक्षेप से जो बात कर रहे हैं तो मैं जानना अंतर्गत समझ लेनी चाहिए। और कंचन जो कहेगा रुपया मैं से रुपयों से मिलना वाला जितना जो ऐश्वर्य है ना, जितने जो संसारिक पदार्थ जिन्हें बस संपत्ति बोला रुपया के साथ में और जो संपत्ति है बाकी रुपया मैं समझ लेनी चाहिए क्योंकि रुपया के अंतर्गत है। तो कंचन कामी इन दोनों को ही क्या कर लो जगह जगह कठिन बतलाया है। तो स्त्री पुत्र ये दोनों उसके मांझा है और कंचन के बीच में रुपया और संपत्ति जो इसके वह दोनों आ जा रहे तो इनको त्याग कर लो दोनों को ही कठिन है और इनसे भी ज्यादा कठिन है मान कठे सत्कार हुआ आउषा मान पत्र दो और ऊंचे आसन में बढ़ाओ। अरे प्रकाश साहब बड़ी खातरी बड़ो मान बड़ो सत्कार हुआ आपने जो है सो ये विद्यालय है ये औषधालय है उनका आपने सो आपने सो मंत्री बनाना गुरु साहब मेरा तो बहुत काम है। अच्छा सभापति बना जाता मैं तो फिर बैठा बैठा ही कर लू वो आपको फूल जाए वही सभापति बना दियो दूसरा कहा इस काम में कितना खर्च है ये खर्च तो इनमें 85,000 रुपया साल को है तो मैं तो थाड़ा पर ही निर्भर हाँ ठीक चलाओ वो काम हसु नहीं थाड़ी ऐसा कर रखी है यार समझो जब आप सभापति हो तो आप ही मालिक हो ही कर ऐसा तो इतना तो नहीं 10,000 रुपया साल का दे जाओ तो 10,000 को प्रबंध बाता नहीं होगी सालन क्यों वो की बना ने सभापति बनाया आदर करे फुलाई मारा पढ़ाई मान पत्र दियो सभा करी सभा से धन्यवाद दियो तो ये ट्रेनिंग भी गए तो मान के वास्ते रुपया ने छोड़ दिया नहीं रुपया से मान श्रेष्ठ हो गयो इसी प्रकार से की ये साहब बड़ा अच्छा आदमी है बहुत बस्ता से लुगाई तरह छोड़ कर करके ये तो आपका तीर्थ सांपनी रहे आपने आवश्यक एक प्रकार से बने बड़ो सत्कार करो आग्रह करो बस एक प्रकार से तो आप कह लो गाय का तो घर पर ही रहना बोलो घर पर ही रहे कोई भक्त आ जाए तो मैं बस समझ को ही रहना अब देखो कैसा उनके दर्जा का आदमी संबंध नहीं रखे खूब आप समझो मान के प्रतिष्ठा करी एक प्रकार से खूब सत्कार करो वो ठीक है आप तो बानप्रस्थ आश्रम की जो रह सुख उस आपको छोड़ दियो फिर भी आपको दार बुद्धि है धर्म के काल के बीच के वहां तो एक प्रकार से आपकी बड़ी उदारता है तो अहम आपको मानव बनाई चौकी आसानी है एक प्रकार से कई लाख की आसानी है मन मन नहीं बांध से खूब लंबी चोरी बातें लिखकर मान पत्र दे दियो आपने पुष्प की वाह पराजी वाह साला तो आपने मंत्री को कहूँ हमेशा मंत्री काम मेरे को निकल रहे तो ऐसा थाना एक प्रकार से उपमंत्री बना दिया मैंने विशेष काम को नहीं तो थे आप तो पांच से जो कोई आपत्ति नहीं और थारो प्रभाव लोगों में बहुत अच्छे पड़े सो और 5-7 से रुपया महीने को ओरा समय में तजवीज बता कर दोनों काम कैसे चले वो तो जो मान पा करके के आदमी अपने रुपया में भी त्याग देवे और स्त्री पुत्र एक आपने सो बस भी उपराम होने और ज्यादा उत्तेजना दिलाए जोश दिला दे तो ज्यादा हो जाए इस मान से भी बड़ाई और ज्यादा खतरनाक है। मनुष्य जो है बड़ाई के लिए कीर्ति के वास्ते मान को भी त्याग कर
कहीं समाज गए तो जाकर के नीचे से नीचे जगह में बैठ गए, जूतों की जगह में बैठ गए। बड़ा सा ये बड़े एक प्रकार से थी अपना क्या ही है ये मान बड़ा प्रतिष्ठा को तो पास में नहीं आने देते, इतना इनके त्याग है। कोई मारा पराजय मान पत्र दे दे तो वहां जाते ही नहीं, इतने अच्छे पुरुष है। जहां मान प्रतिष्ठा हो वहां से समझो कि अपने भाग जाते, इनको कभी अच्छा लगता ही नहीं सब। तो ये जो बात है बड़ाई है ना, वो बड़ाई से लगे तो मैं बड़ाई के वास्ते कीर्ति के वास्ते समझो मान आदर सत्कार अगुण क्या कर। और ईर्ष्या है जिस जगह के बीच में प्रतिद्वंद्वता हुए तो उस जगह के बीच के वहां मान बढ़ाओगी चाहे चुल्ल में जाओ। ईर्ष्या वो है कि अपना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहे मत हो, किंतु वो जो अपात्र है उनकी जो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा हो रही है उसे मैं जरूर कह रहा बैंक एकदम नष्ट कर दी, क्योंकि एक प्रकार से वो पात्र को नहीं। मैं तो महात्मा मैं तो एक प्रकार से ज्ञानी हूं योगी हूं भक्त हूं तो मारा तो उचित ही है, पर वो एक प्रकार से देखो दमड़ी पाखंडी एक लोभी आदमी है बाप जो मान बड़े प्रतिष्ठा वो मेरा खे। थारा इस जगह के बीच में थे वो मान बड़ाई प्रतिष्ठा करो ये मान तो अच्छे बोला है, तो अपना मान बड़ाई प्रतिष्ठा बधाई मत हो पर साथ साथ में उसका भी नहीं होना चाहिए। और अपना वह तो उतारो अपना तो मिटने लायक ही होने के अब वो पात्र को नहीं। देखो कितना भीड़ है जो पूजने के लायक नहीं उन्हें तो लोग पूजे, जो पूजने के लायक नहीं इटगन तो पूजे, पूजने के लायक इटगन पूजे को नहीं। सभा के बीच के में जो शिशुपाल जो है गर्ज कर करके और पांडवों से चुनौती ले रहे किसी कृष्ण चंद्र जी की सबसे पहले पूजा करी क्या बोल करके करी। देखो ये कोई आचार्य नहीं, कोई राजा नहीं, कोई अवस्था में बड़ा नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई वीर नहीं, फिर इसकी पूजा करी के बोल करके यदि अवस्था में बड़े की पहला पूजा हो है तो इनका पिता बैठा होगा सुदेव जी उनकी करनी चाहिए। और यदि आचार्य संजय करो तो द्रोणाचार्य अपना कृपाचार्य ये सब बड़े बड़े आचार्य बचे इनकी पहला पूजा होनी चाहिए थी। और यदि सूर्य समझ करके करी हुए तो महाराज साहब बैठे बैठे वो भी एक प्रकार से बड़े बड़े सूर्य बैठे, ये तो एक प्रकार से समझो कि जुम्म भर जाता है इसमें क्या तुम देखे, इसमें तो कोई भी बात नहीं है कि जिसको तुम आपने पूजा करो। तो फिर भीष्म जी मैंने जवाब दिए कभी मैं तो इन्होंने सबसे तो बड़ा समझा आचार्यों का भी आचार्य समझ कर पूजा करी है, सूर्यों के वहां विषम के सूर्यवीर साक्षात मैं तो समझो कि भगवान समझ करके इनके समान कोई ने वीरता न है अपने कोई आचार्य परम किसी भी विषय के वहां इन सब बढ़कर कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर के मित्र की पूजा सो करिए। फिर बहुत आंदोलन मास राजा युधिष्ठिर भी घबराए कि मैं मालूम क्या होगा भीमसेन तो गदा लेकर के मारने के वास्ते उठाए तो भाई इसको मार के उनके सभा में क्या होगा मचाए। भीष्म जी है जिनका भीमसेन रोके तो चुप रहे जब तक भगवान कृष्ण कोई जवाब नहीं दे तो आपने कुछ मत बोलो, मैं तो आपने सबसे श्रेष्ठ समझदार है तुम चुप रहो। शिशुपाल कहता है अरे बूढ़ा भीष्म आने दे इसको मेरे पास अगर मेरे हाथ के पास में आगे मेरे द्वारा मारा जा रहा है तुम देखा क्यों रोको उसको आने दो। भीष्म जी बोला इस भीमसेन को, अरे भीमसेन ऐसी मृत्यु कभी जी कहा था देखो देखो कैसे चुपचाप गंभीर बैठे और विष्णु जी ने कहते हैं कि ये बूढ़ा जो विष्णु है ये एक बार से नंबू से विष्णु जी सुनते रहे। विष्णु जी बोला ना जो अच्छा पुरुष होता है वो बाहर से निंदा नहीं करता वो तो काम करके दिखलाया जाता है।